لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على بهوله ودنا بتوله مانع كل عظيمة وأزل وكاشف كل غنيمة وفضل أحمده على أواتف كرمه وسوابغ نعمه وأؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا وأتوكل عليه كافيا ناصرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّ حَيَاةً طَيِّبَةً درود بھیجے محمد و آل محمد سب سے پہلے تو اپنے بزرگ قبلہ سے اجازت اور معذرت کے بہرحال یہ آداب کے خلاف ہے کہ جو ہے صاحب علم نیچے بیٹھے ہوں اور ایک عام سا طالب علم اوپر ہو لیکن بہرحال یہ ہماری آئمہ علیہ السلام کی دیوی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ جب کوئی ذکر اہل بیت کرنے کے لیے آئے تو پھر اجازت دے دی جاتی ہے اور آج اس سلسلے گفتگو کی آخری مجلس کہ شہزادی کونین کی ذات کے حوالے سے جو 10 مجالس کا سلسلہ شروع کیا گیا آج اس کی آخری مجلس اور اپنے موضوع کو شروع کرنے بلکہ سمیٹنے سے پہلے چند باتوں کا ذکر کر دوں کہ جو ضروری بھی ہیں وہ یہ کہ بہرحال ہمیں جو ہے اس بات کا شکر گزار ہونا چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے ہر اس فرد کا کہ جو اس فرش اعضا کے انعقاد کے سلسلے میں اس کو منعقد کرنے کے سلسلے میں یا کسی بھی حوالے سے اس فرش اعضا کی مدد کرتا ہے اس کا ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اس کا شکریہ ادا کریں تو سب سے پہلے اگر کوئی کسی کا شکریہ ادا کرنا ہم کو چاہیے تو وہ ہے کہ شارجہ گورنمنٹ کا واقعی ہم دل سے مشکور ہیں کہ جو اتنی اچھے طریقے سے ہمیں یہ ایام منانے کی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے اور اس کے بعد اس امام وارگاہ کی انتظامیہ کہ جس نے اپنے پروگرام ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے پروگرام کو بھی چھوٹا کیا اور اس کے بعد یہ موقع دیا کہ ہم اسی امام بارگاہ میں اپنے پروگرام کو جاری رکھ سکیں اگرچہ اس انتظامیہ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ بہرحال یہ پچھلے سالوں میں کہ جب امام بارگاہ تھوڑے دن کے لیے جو ہے وہ ویران ہوا یا شہید ہوا جو بھی کہا جائے تو اس عرصے میں بھی ساری فرش اعضا کی تقریبیں میلاد کی محافلیں سب اسی امام بارگاہ میں انجام پائیں اور اس سال بھی آپ دیکھیں گے جب تک امام بارگاہ نہ بنے اس وقت تک اسی امام بارگاہ میں ام الخنور میں جو ہے یہی پروگرام ہوتے رہیں گے تو اس حوالے سے یہ اپنے پروگرام کر کے تو ثواب حاصل کر ہی رہے ہیں لیکن جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ بھی ثواب ان کے حصے میں جا رہا ہے یعنی کتنی نیکی کا کام ہے کہ خود تو یہ امام بارگاہ میں آتے ہیں اور ذکر حسین کرتے ہیں، وہ تو ثواب لے کے ہی جاتے ہیں، لیکن جب آپ اور ہم کو یہ اجازت دے کہ ہم اس امام بارگاہ میں آ کے ذکر حسین کریں یا ذکر سیدہ کونین کریں، تو اس میں بھی یہ ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ تو خدا ان تمام افراد کی کہ جس نے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی لحاظ سے فرش اعضا، فرش سیدہ زہرا کے انعقاد کے سلسلے میں مدد کیے، خدا اس کی تمام دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرمائے، اور اس کو دنیا اور آخرت میں ہر جگہ جو ہے سرخرو اور کامرانی عطا فرمائے، اور اس کی تمام جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما، اور انہیں آئمہ علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ سورہ نحل قرآن کا 16 سورہ اور اس کی 97 نمبر کی آیت، کہ جس کی تلاوت کا شرف پہلے بھی حاصل کیا گیا لیکن بیچ میں اس کو روک دیا گیا، اس کے بعد ایک دو دوسری آیتوں کے ذریعے سے شہزادی کونین کی ذات کے حوالے سے پیغام اور میسیج دیا گیا۔ تو اس میں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی عمل صالح کرے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، فہو مومن، وہ مومن ہے۔ اور جب مومن ہو گیا تو پھر خدا اس کو کیا بینیفٹس دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، فائدہ کیا دے رہا ہے اس کے، فلنحیین حیاتن طیبہ، کہ جب عمل صالح کرتا ہے تو مومن بن جاتا ہے، اور جب مومن بن جاتا ہے تو خدا اسے پاک اور پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ تو پہلا کام تو ہم کو کرنا ہے کہ عمل صالح ہم کو کرنا ہے تاکہ مومن کے زمرے میں آئیں۔ جب مومن کے زمرے میں آ جائیں گے تو پھر خدا اپنی وعدے کو پورا کرے گا کہ ولنحیین حیاتن طیبہ، اور خدا پاک اور پاکیزہ زندگی جو ہے وہ اس مومن کو عطا کرے گا کہ جو عمل صالح کے ذریعے سے ایمان پر آیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اہل علم کا مجمع تقریباً اس ممبر سے شارجہ کے اس قسم کی تقاریب بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی علامتیں کیا ہیں۔ مجھے وہ کوئی چیز بیان نہیں کرنی کیونکہ بہت زیادہ یہ ٹاپک پڑھا جاتا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے۔ جیسے ملا احمد ناراقی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ معراج السعادہ میں، کہ اگر اس کو شروع کر دیا جائے گا تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی، میں اپنے ڈائریکٹ موضوع پہ آ جاؤں کیونکہ ٹائم اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ سارا موضوع رہ جاتا ہے، اور آج آخری مجلس ہے تو اپنی چیزوں کو سمیٹ دوں کیونکہ زندگی کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں موقع ملے آئندہ نہ ملے۔ تو اس حوالے سے کہ ایمان کیا ہے، عمل صالح تو بتا دیا گیا کہ ہر وہ نیکی کے کام، واجبات تو خیر ہم کو ادا کرنے ہی ہیں، وہ تو ہماری اختیار میں نہیں کہ میں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، وہ تو پڑھنا ہی ہے آپ کو، روزہ رکھوں نہ رکھوں نہیں وہ تو رکھنا ہی، اگر قدرت ہے، صحت ہے، طاقت ہے تو کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اگر اپنے شہر میں ہو تو تم کو روزہ رکھنا ہی، اس میں تو ہمارا اختیار نہیں ہے۔ یہ تو ڈیوٹیز وہ ہیں کہ جو ہم کو ادا کرنی ہے، لیکن عمل صالح کے جو ہمارے اعمال کو زیادہ بڑھاتا ہے، ہماری نیکیوں کو زیادہ بڑھاتا ہے، وہ ہے کہ مستحب اعمال کے انسان جتنا زیادہ کرتا ہے خدا اس کے ذریعے سے اس کے مراتب کو بڑھاتا جاتا ہے، اور پھر روز قیامت دو مومن ایک ساتھ محشور ہوں گے، ایک کہے گا یہ بھی میرے ساتھ رہتا تھا، اور دوسرا کہے گا کہ میں بھی اس کے ساتھ رہتا تھا، پروردگار ہے تو نے اس کو جنت پہ تو اتنے بڑے درجے پہ گھر دے دیا، اور مجھے جو ہے جنت پہ اتنی چھوٹی جگہ پہ گھر دیا۔ تو وہاں راز کھلے گا کہ تم جب رات کو سو جاتے تھے تو یہ رات کوٹ کی نماز شب پڑھتا تھا، تم جب تنخواہ لے کے چلے جاتے تھے تو یہ اس میں سے صدقہ خیرات نکالتا تھا۔ تو یہ مستحبی اعمال تو ہیں کہ جو انسان کے درجات کو بڑھاتے ہیں، واجب اعمال تو خالی آپ کو جہنم میں جانے سے روکتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی تو اسٹیٹس ہے نا، وہاں پہ بھی کیٹیگریز ہیں، بھائی یہ آدمی جو ہے اس کے اعمال اچھے ہیں، دیندار ہے، گناہگار نہیں ہے، جنت میں چلا گیا، لیکن جنت میں کہاں ہے، پہلے اسٹیج پہ ہے۔ لیکن اگر سلمان اور مقداد اور ابو ذر جیسا ایمان کا درجہ ہے تو پھر وہ جیسے سلمان رسول اللہ کے برابر میں، مولا کائنات کے برابر میں، اسی طرح وہ ماننے والا کہ جس کا کردار سلمان کے جیسا ہوگا وہ بھی سلمان کے برابر میں ہوگا، تو سلمان کا محل کہاں ہوگا، رسول اللہ کے برابر میں۔ تو اسی طرح کیٹیگریز ہیں۔ تو ایمان کیا ہے؟ یہاں جو کہا گیا ہے کہ جو عمل صالح کرے فہو مومن، تو مومن وہ ہے کہ جس کا ایمان سالم ہو۔ ایمان کیا ہے؟ خود مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان الایمان علی اربعۃ ارکان، ایمان کے چار رکن ہے، یعنی ایمان جس طرح یہ اتفاق سے میرے سامنے جو یہ مینار ہے، یہ بھی چار ہی، یہ چھت جو ہے یہ چار ہی مینار پہ جو ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے۔ تو یہاں تو یہ بات سمجھانا اور بھی آسان ہو گئی کہ الایمان علی اربعۃ ارکان، ایمان کے چار ستون ہیں۔ जिस तरह इन सुतूनों में से एक को भी अगर काट के हटा दिया जाए तो छत उस साइड से या पूरी गिर जाएगी या टेढ़ी हो जाएगी। कुछ लोग छत देख रहे हैं अभी नहीं गिरने वाली और ना कोई सुतून गिराने वाला है। एक मिसाल दिए कि ये चार, ये गुंबद, ये छत, इन चार सुतून पर कायम है। इसी तरह मौलाए कहना तस्बीह दे रहे हैं कि ईमान के भी चार सुतून हैं, या अगर इसके सुतूनों को गिरा दिया जाए या बैलेंस को आउट कर दिया जाए तो ये पूरी छत गिर जाएगी। इसी तरह इन चार सुतूनों में से किसी एक को भी हिला दिया जाए या अपनी जगह से हटा दिया जाए, सारा के सारा ईमान गिर जाएगा। तो ईमान क्या है, ईमान किसे कहते हैं? एक तो इस्तलाही माना है कि जो भी अल्लाह, रसूल, अंबियाए मा सलफ के जो गुजर चुके हैं उनके ऊपर और रसूल के हकीकी जानशीनों के ऊपर ईमान लिया है उसे कहते हैं मोमिन, कि वो ईमान लाने वाला है। वो तमाम खुदा की वहदानियत का, नबूवत का, कयामत का और तमाम आइम्मा की विलायत का इकरार करे, ये हो गया मोमिन। लेकिन ये ईमान तो इसके पास आ गए, मोमिन के जाहिर में तो आ गए, लेकिन मौलाए कायनात क्या कह रहे हैं कि ईमान के चार पिलर्स हैं, कि ईमान इनके ऊपर बाकी है। अगर इनमें से कोई भी एक हिल गया तो सारा के सारा ईमान गिर जाएगा। अब वो चार क्या चीज़ें? ये चार बेसिक बुनियादी चीज़ें कि जो इंसान का अकीदा ऐसा होना चाहिए कि आज हमारे ऊपर जो सबसे ज़्यादा हमले होते हैं वो किस जानिब से होते हैं? तौहीद के हवाले से, कि हम जो आइम्मा से तवस्सुल करते हैं उसको दुनिया वाले क्या कहते हैं? ये शिर्क कर रहे हैं। आज तक 1400 साल गुजर गए, पूरा कुरान अव्वल से लेकर आखिर तक उठाओ, शिर्क की इतनी तारीफें बयान की कि मुशरिक वो है, मुशरिक वो है। आज तक मुसलमानों को कुरान हाथ में होने के बावजूद शिर्क की तारीफ ही नहीं पता चली कि शिर्क कहते किसे हैं। शिर्क कहते किसे? कल एक बच्चे ने भी सवाल किया कि उसके स्कूल में उसकी टीचर कहती है कि मुर्दे के पास जाने से कोई फायदा नहीं, मुर्दे से मांगने का कोई फायदा नहीं, वो शिर्क है। तो वो बेचारा बच्चा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना सा बच्चा जो है वो आके सवाल कर रहा है कि शिर्क का माना क्या है, शिर्क की तारीफ क्या है। यानी ये स्कूलों में बाकायदा ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। आपको स्कूल में इस्लामियात पढ़ाने के लिए रखा गया है, आपको स्कूल में इसलिए नहीं रखा गया है कि आप अपनी थिंकिंग, अपनी थॉट दूसरों में मुंतकिल करें। आपका काम है कि जो सिलेबस लिखा गया है इसको पढ़ाइए। आपका काम ये नहीं कि मेरा अकीदा क्या है वो तुम सीखो। लेकिन आमतौर पे होता ही है कि पढ़ाने वाला जब आता है तो वो अपना अकीदा बयान करता है। आपको कहा गया है कि ये सिलेबस पढ़िए, इस्लामियात है, आपको ये टेक्स्ट पढ़ाना है। वो टेक्स्ट तो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन वो अपने दीन की खिदमत कर रही होती हैं, अपने दीन को इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि दीन दीन ये है। और इतने इतने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे सवाल कर रही हैं कि जिनका उनके पास क्या, अगर यही सवाल मैं उन टीचर से कर बैठूँ तो उनके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन बहरहाल अब बच्चे से कह रही हैं कि ये तुम जो जाते हो, तुम लोग जो मुर्दों से मांगते हो, ये शिर्क है। तो मैंने तो दो चार बच्चे को जवाब दिए कि बताओ अपनी टीचर से ये पूछ लेना कि तुम बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, अल्लाह से क्यों नहीं दुआ मांगते हो? तुम भी तो मुशरिक हो गए ना भाई। अल्लाह नहीं है क्या? अल्लाह वो है कि मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा। अल्लाह वो है कि जिसके जिसका नाम जो है दवा है, जिसका जिक्र जो है शिफा है। और आपने देखा कि यहाँ पे गाड़ियों पे लिखा होता है पीछे ला तंसा जिक्र अल्लाह, ये लिखते ही इसीलिए जो जो लिख रहे होते हैं उसके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। पीछे लिखा होता है, आगे लिखे तो उनको खुद नजर आए ना कि हमने लिखा क्या है। इसका माना क्या है कि अल्लाह को ना भुलाना, पीछे लिखते ताकि नजर ही नहीं आए। नजर आएगा तो याद करना पड़ेगा ना, जब पीछे लिखे तो हमें क्या। तो शिर्क बच्चे को कह रहे हैं कि ये शिर्क है। मैंने कहा उनसे ये कहो कि आप खाना, जब खाना होता है तो आप दुकान, आप अपने वालदेन से, अपने पेरेंट्स से नहीं कहते मुझे रोटी दे दो, शिर्क नहीं हो गए? सारी चीजें छोड़ें, आपका जो वीजा दिलाते हैं उसको आप क्या कहते हैं? अरबाब। सबसे बड़ा तो शिर्क यही हो गया। यानी पूरी अरब दुनिया जो है मुशरिक हो गई, क्योंकि हर आदमी तो लोकल से यहां पे अरबाब बना बैठा है। रब किसे कहते हैं? रब तो अल्लाह है ना। यानी अगर कोई इल्मी जवाब ना भी दिया जाए, खाली ऐसी इधर उधर की जेब खाली करने वाले जवाब दिए जाए तो उसी से ये सही हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ऐसे काम हो रहे हैं कि लोगों को, बच्चों को इस तरह से बहकाया जा रहा है कि ये शिर्क है, वो शिर्क है। तो मैंने छोटा सा उनको जवाब दिया कि मैंने कहा शिर्क ये है कि देखिए वास्ता बनाना शिर्क नहीं है। आपको इस इमाम बारगाह की छत पे जाना है, आप अगर यही अकीदा है कि हर वो चीज़ कि जिससे मदद ली जाए वो शिर्क है, तो आप भी मुशरिक हैं क्योंकि आप अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट के जरिए से जाते हैं, लिफ्ट को सहारा बना रहे ऊपर जाने का, मुशरिक हो गए ना भाई। अल्लाह से दुआ करो परवरदिगार 40 मंजिल पे मुझे पहुंचा दे, सुबह से लेके शाम तक दुआ करो, देखता हूँ अल्लाह पहुंचाता नहीं पहुंचाता। बहरहाल तुमको लिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा, जब लिफ्ट बंद होगी तभी ऊपर पहुंचेगा, तो शिर्क हो गया ना। आपने लिफ्ट से मदद ली, आपको इसकी छत पे जाना था आपको सीढ़ी लगानी पड़ी, मुशरिक आप फिर भी हो गए, आपने सीढ़ी को इस्तेमाल किया। तो पता ये चला कि वास्ता बनाना, बीच में जरिया बनाना, ये शिर्क नहीं है। अगर ये शिर्क है तो परवरदिगार आलम जिब्रील के जरिए से वही क्यों भेज रहा है भाई? अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट भी तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट खिताब कर सकता था ना। ये 23 साल में कुरान आया और कुरान को लेके आने वाला बार बार जिब्रील, क्या जरूरत थी भाई? खुदा डायरेक्ट भी तो रिस्क दे सकता है ना। ये मलाइका को क्यों रिस्क दिया गया कि तुम रिस्क बांटोगे? खुदा चाहे तो इन्नमा इज़ा अरादा शैयन अन यकुल लहु कुन फयकुन। अल्लाह तो वो है कि जब किसी चीज़ का इरादा करता है और कहता है कि हो जा, वो हो जाती है। तो जब उसके पास इतनी कुदरत कि जब चाहे कह दे कि हो जा तो हो जाती है, तो वो रिस्क बांटने के लिए एक फरिश्ते को दिया हुआ है, मौत के लिए एक फरिश्ता है कि सूर वो फूकेगा इसराफील तो दुनिया में मौत वाकई होगी। क्या यही सूर अल्लाह खुद नहीं फूक सकता था? अगर यही शिर्क है तो माजाल्लाह सुम्मा माजाल्लाह शिर्क की तरबियत तो अल्लाह खुद कर रहे हैं कि जिब्रील के जरिए से कुरान नाजिल हो रहा है, फरिश्ते के जरिए से सूर फुकाया जा रहा है, फरिश्ते के जरिए से रिस्क दिया जा रहा है। पता ही चला कि वास्ता बनाना शिर्क नहीं है, वास्ते को मुस्तकिल ये जानना कि यही सब कुछ है, ये शिर्क है। वास्ते को, ये जो बीच में हमारे और आपके दरमियान वास्ता है, इसको वास्ता समझे तो कोई शिर्क नहीं है। मैं इरादा करके बाहर निकल रहा हूं कि मुझे रोला तक जाना है और मैं गाड़ी पे बैठ के जा रहा हूं, तो ये भी शिर्क हो गए बकौल उन लोगों के कि आप गाड़ी को वसीला बना रहे हैं। गाड़ी को वसीला में उस गाड़ी को वसीला बनाना उस वक्त शिर्क होगा कि जब मैं कहूं कि अगर ये गाड़ी जो है ना, यही जो है मुझे पहुंचाएगी, यही सब कुछ है, इसमें इतनी ताकत है कि मुझे पहुंचाएगी, वरना कोई नहीं है, तो शिर्क हो सकता है। कि आपने सब कुछ जरिया और सब कुछ एहतमाल इसी को दे दिया कि इसके अलावा किसी में कोई ताकत नहीं, यही सब कुछ है, मेरा जरिया यही है रोला तक पहुंचने का, ये शिर्क है। हम ये थोड़ी कहते हैं, हम तो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो इस गाड़ी को स्टार्ट ही ना होने दो, मैं यही खड़ा के खड़ा रह जाऊं, गाड़ी भी है, स्विच भी है, चाबी भी है, पेट्रोल भी है, सब कुछ है। हमारी नीयत में तो ये था कि ये अल्लाह की दीवी ताकत के जरिए से मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ जो मुझे पहुँचा रही है। अगर मैं इस गाड़ी को मुस्तकिल जरिया समझ लूँ रोला तक पहुँचेगा तो शिर्क हो जाएगा। तो मैंने इस बच्चे को यही जवाब दिया कि देखो अपनी मिस से यही जाके कह दो कि वास्ते को मुस्तकिल समझना ये शिर्क है, वास्ते को जरिया समझना, वसीला समझना ये शिर्क नहीं है। अगर ये शिर्क हो जाए तो इंसान के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए, हर चीज के लिए इंसान मोहताज है दूसरे का। तुम्हारी नस्ल चलने के लिए तुम मोहताज है कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी हो तो तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े, तो शिर्क हो गया ना। जाओ पैदा कर लो जिससे मर्जी जी जाए, क्यों अपनी औरतों के मोहताज हो? हमें बेटा चाहिए, इस इरादे से बेगम के पास गए, शिर्क हो गए। यानी तुम्हारे नियत में ही शिर्क आ गए, अब बताओ कैसे तुम्हारी नस्ल चलेगी? वास्ते को मुस्तकिल बनाना ये शिर्क है। लेकिन अगर जरिया बना समझा जाए कि जैसे हम आइमा कहते हैं कि रिस्क, हम कहते हैं ना कि गाजी अब्बास हमको दे रहे हैं या मौला कायनात हमको दे रहे हैं, मौला कायनात जो हमको दे रहे हैं या गाजी जो हमको दे रहे हैं, ये खुदा की बेहतरीन और दीनदार और बाइज्जत अफराद हैं कि जिनके जरिए से हम खुदा से कहते हैं तो खुदा हमको जल्दी दे देता है। वरना असल रिस्क देने वाला तो परवरदिगार आलम की ज़ात है, ज़िंदगी और मौत देने वाला तो खुदा वाहदहू ला शरीक की ज़ात है। लेकिन ये इतने अच्छे अफराद हैं कि कुरान खुद कह रहा है कि बाद अफराद वो है कि रज़ी अल्लाह अनहु व रज़ू अनहु, कि कुछ अफराद ऐसे कि जिनसे अल्लाह राज़ी है, अल्लाह उनसे राज़ी है। तो जिनसे अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह की मर्ज़ी, भाई मैं राज़ी हूँ अपने बीवी से, अपने बच्चे से, मेरी मर्ज़ी, मैं जो कुछ दे दूँ, कोई इतराज़ कर सकता है? मेरा पड़ोस में रहने वाला ये इतराज़ कर सकता है कि आपने सारी दौलत अपने बेटे को दे दी, बराबर में मेरा भी तो बेटा था, मैं कहूँगा मेरी मर्ज़ी, मेरा पैसा था, मैं जिसको जी चाहे दे दूँ। तो खुदा सारी कायनात का मालिक, उसकी मर्ज़ी, उस जिससे राज़ी हो गया उसने कहा अली तुम मुर्दों को ज़िंदा कर लो, हमारी तरफ से इजाज़त है तुम्हारे लिए। जब ईसा मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है तो अगर अली ज़िंदा कर दे तो हैरानी की क्या बात है? जब ईसा परिंदा बनाए और परिंदा मिट्टी का उड़ने लगे और हमारे आईमा कोई मौजजा करके दिखा दे, इमाम रजा अलैहि सलाम दरबार में लगे हुए शेर की तस्वीर को कहें कि असली शेर बन के आ जाओ, शेर कूद के आ जाए, तो उसमें हैरानी की कौन सी बात है। कि हमारा तो अकीदा ही यही कि हमारे सारे आईमा तमाम अंबिया से अफजल हैं। तो इस बहस को छोड़ते हम अपनी असली बहस की तरफ आ जाए, टाइम बहुत हो गया। कि ईमान कि जिसके लिए आयत पे कहा गया कि जो अमल साले करेगा फ मोमिन, वो मोमिन है। और मौलाए कायनात कह रहे हैं कि मोमिन के ईमान के चार सुतून है कि जिसके ऊपर पूरा ईमान बाकी है, अगर एक भी हिल गया या एक भी अपनी जगह से हट गया तो सारा के सारा ईमान गिर जाएगा। उसमें पहला क्या है, पहला मीनार क्या है, अत्तवक्कुल अल्लाह। मोमिन बनने के लिए पहली शर्त यह है कि तुम्हें खुदा के ऊपर जो है तवक्कुल होना चाहिए। यानी जो भी काम कर रहे हो, जो भी कोशिश कर रहे हो, तवक्कुल खुदा पर होना चाहिए। यानी जो भी काम इंसान करे खुदा पे तवक्कुल करे कि भाई जो काम कर रहा है इंशाल्लाह खुदा इसमें मुझे बरकत देगा, मैं जो काम कर रहा हूं खुदा इसको मुझे अंजाम तक पहुंचाएगा। लेकिन तवक्कुल का मतलब यह भी नहीं है कि इंसान हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए और कह के मैं तो मुतवक्किलीन में से हो गया, और खुदा वो है कि इन्नल्लाहु युहिब्बुल मुतवक्किलीन, खुदा तो तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है, बस अब मुझे ना ऑफिस जाना है, मुझे ना कमाना है, ना मुझे कुछ करना है, क्योंकि तवक्कुल कर रहा हूँ अल्लाह का काम है मुझे रिज़्क दे। तवक्कुल ये नहीं है, तवक्कुल ये है कि कोशिश करो, जहमत उठाओ, अपने मकसद तक पहुँचने के लिए जितने ज़राए तुमको चाहिए उसको इस्तेमाल करो, उसके बाद तवक्कुल करके खुदा तुमको मकसद तक पहुँचाएगा, तब ये तवक्कुल है। कि जैसे इमाम रजा अलैहि सलातो व सलाम ने अपने मानने वालों को एक पैगाम दिया कि देखो तवक्कुल ये नहीं है कि हमसे जो तुम अहादीस में सुनते हो या हम जब तुम्हें तवक्कुल के लिए कहते हैं, इसका मतलब ये कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, कहो मैं तो अल्लाह पे तवक्कुल किया हूं। इमाम फरमाते हैं अपने सहाबी से कि देखो ऊंट के अगले दो पांव बांधो और उसके बाद खुदा पे तवक्कुल करोगे ये भागेगा नहीं, ये तवक्कुल है। यानी उस जमाने में तो सवारी ऊंट थी ना, तो इमाम ऊंट की मिसाल दे रहे हैं। आज हमारे जमाने के इमाम आ जाए तो लैंड क्रूजर और पजेरो की मिसाल देंगे कि देखो है लॉक करके आओ और फिर तवक्को करो कि ये इसको चोर नहीं ले जाएगा, ये तवक्कुल है। आप चारों दरवाजे खोल के इग्निशन में उसकी चाबी लगा के और आके बैठ जाए कि अल्लाह पे तवक्कुल है, चोर थोड़ी लेके जाएगा। मौला कह रहे तवक्कुल नहीं है। इंश्योरेंस वाले भी तो यही करते हैं ना कि अगर आपकी गाड़ी उठ जाए तो आप जाके क्लेम करें कि भाई मेरी गाड़ी उठ गई, मुझे पैसे चाहिए। तो पुलिस आती है कि इन्वेस्टिगेशन करती है कि भाई बताओ कैसे गाड़ी कहाँ पार्क की थी, कहाँ मैं बाजार गया था और यहाँ मैंने गाड़ी पार्क की थी, वापस आए गाड़ी गायब थी। तो पूछा कैसी हालत में गाड़ी छोड़ के गए थे, उसने कहा बस मुझे दो मिनट का काम था तो मैं स्टार्ट छोड़ के चला गया था। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपको एक पाई नहीं मिलेगी, इसलिए कि आपकी बेवकूफी है। दो मिनट के लिए जाओ या दो घंटे के लिए जाओ, गाड़ी स्टार्ट, दरवाजा खुला हुआ है, चाबी अंदर लगी हुई, आप तो खुद चोर से कह रहे हैं कि बेवकूफ आदमी क्या इंतजार कर रहा है, तेरे लिए सारे मौके फराम करके जाओ। बेवकूफ है तू कि जितनी देर में मैं सुपरमार्केट से आ रहा हूँ तू खड़ा हुआ यहाँ देख रहे, भाई गाड़ी लेके भाग जा। और माशाल्लाह यहाँ तो आसानी भी है, यहाँ से गाड़ी उठाओ उम्मान जाओ सब कुछ दो मिनट में हो जाता है। और तवक्कुल भी यही है कि खाली ये नहीं है कि बस कोशिश नहीं करो उसके बाद खुदा पे भरोसा करो, खुदा पे तवक्कुल करके बैठो कि अल्लाह देगा। क्योंकि खुदा ने कुरान में कहा कि अल्लाह तब मुतवक्किलीन को पसंद करता है, अल्लाह मुतवक्किलीन को पसंद करता है, अल्लाह बेवकूफ को पसंद नहीं करता, अल्लाह बेवकूफ और अहमक को पसंद नहीं करता। ये हिमाकत है, ये बेवकूफ़ी है कि इंसान कोशिश ना करे और ये तवक्कुल करके बैठ जाए कि अल्लाह देने वाला है। अल्लाह कहते नहीं, सारे खतरात को सारी चीज़ों को देखो, अगर कोई चीज़ छोड़ के जा रहे हो तो देखो, ऐसा तो नहीं कि आसपास में कोई तुम्हारा बैठा हुआ है जो तुम्हारी चीज को चुरा ले, इसको तिजोरी में रख के जाओ, इसको लॉक में रख के जाओ, फिर तवक्कुल करो कि खुदा इसको बचाएगा, ये तवक्कुल है। तो पहला मीनार क्या है कि जिसमें हमारा ईमान कायम है, वो तवक्कुल अल्लाह, कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना है, कभी किसी दूसरे के पास नहीं जाना, कभी किसी दूसरे से मदद नहीं लेना। हम जो आयमक के पास जाते हैं वो जरिया बनाते हैं इनको। कि कल मैंने बच्चे को भी यही मिसाल दी कि अपनी मिस को जाके ये जवाब दो कि जिस तरह मुझे साइकिल चाहिए या लैपटॉप चाहिए, और मुझे पता है कि मैं अपने वालिद से कहूँगा तो मेरे वालिद मुझे कभी नहीं दिलाएंगे क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है, मतलब मेरे नंबर अच्छे नहीं आए इम्तिहान में। लेकिन अगर मैं अपनी माँ से कहूँ ना कि बाबा से कहें मुझे लैपटॉप दिलाएं, तो माँ आमतौर पर अच्छा वसीला बन जाती है। हमारे दोस्तों ने बड़ी अच्छी बात कही, फिर खवातीन की तरफ से इतराज आया कि मौलाना औरतों के पीछे पड़ जाते। खैर आज आखिरी मजलिस, आप जो इतराज आएगा वो तो बाकी इंतजामिया भुगतेगी, हम तो चले जाएंगे। कि औरत, औरत की हंसी भी खतरनाक है, औरत के आंसू भी खतरनाक है। कि जो काम ये हंस के नहीं करा पाती वह आंसू गिरा के करा लेती है। अगर आपको वो मुस्कुराहट के जरिए से बेवकूफ ना बना पाए तो इतना गमजदा चेहरा बनाएगी आप कहेंगे बिचारी, इससे ज्यादा तो कोई कायनात में मासूम नहीं। पता चला काम करा लिया, उसके बाद कहा बेगम जरा चाय लाओ, कहा कौन सी चाय, दिमाग खराब हो गया क्या, जब देखो चाय, जब देखो चाय, जब काम था तो आंसू भाए मुस्कुरा के चाय बनवा ली, और जब हमने कोई काम का कहा अच्छा बहुत दिमाग खराब हो गया, नौकरानी समझ रखा है क्या, चलो उठ के खुद जाओ चाय पियो। तो ये बच्चे की मिसाल क्या है, यही उस बच्चे को मैंने यही कहा कि अपनी जाके मिस को कहो कि हम, मुझे लैपटॉप चाहिए, साइकिल चाहिए, अपने वालिद से कहूंगा कभी नहीं मानेंगे, बल्कि अगर उनसे कहा तो खैबर और खंदक के सारे मुर्दे उखाड़ के ले आएंगे। अच्छा पिछले साल याद है कितने अच्छे नंबर लाए थे, अभी याद है तुमने टेस्ट में क्या कारनामा दिखाया है, इतना तो मैं ऑफिस नहीं जाता जितना तुम्हारे स्कूल जाना पड़ता है, तो इससे बेहतर है कि पुरानी फाइलें खुले, माँ के पास जाके कहता है कि आप बाबा से कहें मुझे दिला दें। माँ ने कहा बेटा अक्सर बच्चे खराब माओं की वजह से होते हैं, कि बच्चों की बुराइयों को माएँ छुपाती हैं बाप से, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि बच्चा खराब हो जाता है। मियाँ बीवी में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर बच्चा कोई गलत काम करे तो माँ बाप को बताए कि देखो ये कर रहा, क्योंकि मर्द ज्यादा अच्छा फैसला करने वाला है। आमतौर पर बच्चे खराबी किसकी वजह से होते हैं, माँ की वजह से होते हैं, बेतुका लाड, सोने दे बच्चा है, अरे पढ़ लेगा अभी तो बहुत दिन इम्तिहान में, वो बेचारा बाप इसका फ्यूचर देख रहेगा, अगर नहीं पढ़ा तो ये आगे जाके क्या करेगा। आजकल तो बगैर एजुकेशन कुछ चलता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लाड प्यार, और खुश होता है इकलौता बच्चा हो तो इतना ही खराब होता है कि जिसकी कुछ हद नहीं। तो मैंने इस बच्चे से कहा कि मिस से कहो कि जब मैं लैपटॉप अपने बाप के जरिए से नहीं ले सकता ना, तो मैंने अपनी माँ को से कहा कि आप दिला दे, वालिद से कहें कि आप वो दिला दें। तो चूंकि वो माँ है, वो शौहर के मिजाज को भी जानती है, उसको पता है कि इनसे किस कौन सा काम किस तरीके से निकाला जाता है। पता चला शाम को आया तो बिरयानी और ये और वो अच्छा खाना खिलाया, शौहर भी खुश हो गया, उसको क्या पता कि बाद में जेब खाली करने वाली है। जब बहुत मजा लेके खाना खा लिए तो कहा कि सुने एक छोटा सा काम करेंगे आप, कहा हाँ हाँ बताओ क्यों नहीं, कहा वो बेचारा बच्चा ना हमारा पड़ोस में, उसके पास भी लैपटॉप, उसके पास भी लैपटॉप, बड़ा गिल्टी फील करता है, अच्छी बात नहीं है, अभी से कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा, आगे जाके ये ब्रॉड माइंडेड नहीं हो पाएगा। शौहर ने कहा हाँ सही कह रही हो, उसको अपना बचपन याद आ गया बेचारे को कि सारे मोहल्ले के पास साइकिल थी, मेरे पास साइकिल नहीं थी, तो मैं सबके पहिए घुमाता रहता था, चले ऊपर नहीं बैठ सकता तो नीचे ही बैठ के घुमाऊँ। उसने कहा हाँ सही कह रही हो, चलो ठीक है, कितने का है, कहा ज़्यादा महंगा थोड़ी है, मुझे पता है आपकी आमदनी कितनी है, ज़्यादा महंगा नहीं, 2000 दिरहम का। जज्बात में आगे शौहर ने दे दिए, अगर यही बच्चा खुद जाता कभी बाप ना दिलाता। माँ के और इसके ताल्लुक इतने अच्छे हैं कि ये 2000 शायद बाप 2 साल ना देता, लेकिन माँ ने जो है वो एक खुश अखलाकी के जरिए से ले लिए। तो इससे पता क्या चला, नतीजा क्या निकला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ताल्लुकात दूसरों से इतने अच्छे होते हैं कि वो काम आप खुद करना चाहे तो नहीं हो सकता, उसके जरिए से कराए तो हो जाएगा। जैसे कि आप इदारों में भी देखते हैं, आप जाएंगे तो कभी काम नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि वहां उसका जो सेक्रेटरी है उसके उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आपने अपने दोस्ती के जरिए चैनल चलाया, उससे कहा कि यार अपने बॉस से कोई काम कर दे, पता चला हो गया। तो खुदा के पास भी ऐसे ही है, कुछ हस्तियां खुदा के पास भी ऐसे ही हैं कि सारी दुनिया के अफराद में से वो खुदा को इतना पसंद है, इतने पसंद है वो, कि खुदा सबकी बात रद्द कर देता है, इनकी बात रद्द नहीं करता। तो अगर इनके जरिए से जाओ और खुदा सुन ले तो कहां से शिर्क हो गया, हमने इनको खुदा थोड़ी कहा है, हमने तो इनको वसीला बनाया है, और खुदा तो हमारा वही है कि जो वादहुला शरीक है। तो तवक्कुल करना है कि कभी किसी के आगे नहीं जाना, और जो हम जाते भी हैं किसी के पास तो उसके पास जाते हैं कि जो जिसने ये दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूं, उसने हमेशा ही कहा कि मैं खुदा का बंदा हूं, और जो कुछ खुदा दे रहा है, वरना कायनात का सारा रिस्क अगर चल ही रहा है तो वो हमारे आईमा की बरकत तो है, जितनी नेमत है, जितनी रहमत है, जितनी बरकत है, सब आईमा के तसद्दुक है। कि आप हदीसे किस्म में पढ़ते हैं ना कि आसमान बनाया इनके लिए, जमीन बिछाया इनके लिए, और सारी हदीसे किस्म में आप पढ़ते हैं क्या, सारी नेमतों का महवर यही पंचतन की जात है, तो हम इनको वास्ता मानते हैं, मुस्तकिल नहीं मानते कि यही राजिक हैं, यही जिंदगी देने वाले, यही मौत देने वाले। अगर हमारा अकीदा ये तो वाकई शिर्क है, लेकिन हमारा अकीदा क्या है कि ये खुदा के मुकर्रब बंदे हैं, ये खुदा के हुक्म से जिंदा करते हैं, ये खुदा के हुक्म से रिस्क देते हैं, ये खुदा के हुक्म से जो है अगर चाहे तो मार भी सकते हैं। और जैसे कि तारीख में वाकयात भी हैं, इसको इससे ज़्यादा बयान नहीं करना, बस अगले वाला सुतून। दूसरा क्या है कि वह तफीज़ इल्लाह, क्योंकि इसके बाद मुझे एक रिवायत पढ़ी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ तो इसको शुरू करूँगा ना। कि दूसरा सुतून ये है कि वह तफीज़ इल्लाह, कि अपने कामों को तुम्हारी ड्यूटी ये कि अंजाम दो, जो जिम्मेदारी खुदा ने रखी है वो अंजाम दो, अपने कामों को अल्लाह के सिपुर्द कर दो। नहजुल बलागा में भी एक जुमला है कि अगर तुमने अपनी जहमत, तुमने अपनी मेहनत और सारी कोशिश कर ली, उसके बाद भी तुम्हारा वो काम नहीं हुआ ना, तो जो खुदा ने तुम्हें दिया है इसी पर राजी रहो, खुदा इससे ज्यादा तुम्हें अच्छा देने वाला है। रिस्क का मसला है, औलाद का मसला है, जिस चीज का मसला है, आप सारे वो काम के जो इसके लिए जरूरी आपने अंजाम दे दिए, मतलब औलाद दी, सारे डॉक्टर को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, रिस्क नहीं बढ़ रहा, जॉब नहीं मिली, आपने सारी कोशिश कर ली, और उसके बाद अगर जॉब नहीं मिली या औलाद नहीं हुई, तो ये चीज़ अल्लाह के हवाले कर दो कि अब अल्लाह की मर्जी है, वो खुद ही देगा। और ऐसा है कि अल्लाह देता भी है। और कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई नेमत हमें बहुत ज़्यादा सवाल करने के बाद भी ना मिले ना, तो इसमें भी हमारा फ़ायदा होता है कि जैसे अवायल इस्लाम के जब मदीने मक्के से हिजरत करके मुसलमान मदीने में आ गए हैं, और इतनी गुर्बत है कि खाने को नहीं है, एक खजूर होता था, साथ साथ मुसलमान होते थे कि इस खजूर को कौन खाएगा, इतनी गुर्बत थी। वो तो खैबर के बाद फ़कीर गनी हो गया था, उससे पहले तो सारे एक ही तरह थे। और मस्जिद नबवी के अंदर एक चबूतरा था जिसे सुफ़ा कहते हैं, असहाब सुफ़ा, वहाँ पर असहाब बैठा करते, उनके पास रहने की जगह नहीं थी, तो वो सारे एक ही जगह बैठे होते थे एक चबूतरे के ऊपर। उनमें एक सहाबी थे साद, कि जिनकी हालत बहुत ही खराब, बहुत ही गरीब, और अल्लाह के रसूल जब उनको देखें बड़ा तरस आए, और ये नियत करते थे कि खुदा ने अगर कभी मुझे कुछ दिया ना तो मैं इसको दूंगा ताकि इसकी हालत अच्छी हो जाए। और ये आदमी साद वो है कि जो नमाज में रसूल अल्लाह के पीछे बैठता है, जब रसूल अल्लाह मस्जिद में आते देखे साद बैठा हुआ है, जब नमाज पढ़ा के मस्जिद से निकले देखे साद जमात में है, रसूल को देख के गमज़दा होते कि खुदा कुछ दे ताकि मैं इसको भी दे दूँ, बेचारे की हालत इतनी ख़राब है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल के पास जिब्रील आए, और आने के बाद कहा कि ए रसूल, अल्लाह ने ये दो दिरहम दिए और कहा कि साथ को दे दें, उससे कारोबार करें। अल्लाह के रसूल आए और दो दिरहम दे दिए साथ को। साथ ने जब तिजारत शुरू की, अब ये कोई आम पैसा तो नहीं था, ये कोई आम इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी, ये तो अल्लाह की तरफ से आया हुआ पैसा है कि जिसमें इतना प्रॉफिट और इतना फ़ायदा है कि साथ जो चीज़ एक दिरहम की लेके आते हैं वो दस दिरहम की बिक रही है, यानी इतना प्रॉफिट। और देखते देखते साथ की मस्जिद के बिल्कुल बराबर में दुकान है, और साथ की इतनी कारोबार बढ़ गया, इतनी आमदनी बढ़ गई कि आहिस्ता आहिस्ता साथ की जमात की नमाज छूटना शुरू हो गई। कि पहले तो अव्वल सब में जाके बैठते, रसूल अल्लाह के पीछे जाके बैठते, अब कारोबार में इतना मुनहमिक हो गए कि अजान हो रही है, नमाज हो रही है, और इतना टाइम नहीं कि जो है वो नमाज में शिरकत कर सके। अल्लाह के रसूल ने देखा, फिर अफसोस हुआ कि देखो एक ज़माना था कि अव्वल वक्त में मेरे पीछे नमाज पढ़ता था, और अब वो वक्त आ गए कि नमाज अजान हो रही होती है और ये दुकान पर कारोबार कर रहा होता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए साथ, नमाज में क्यों नहीं आते? कहा कि अल्लाह के रसूल आप नहीं देखते कितना रश लगा होता है, कितने कस्टमर होते हैं, अब अगर मैं इनको छोड़ के आऊँ तो कैसे आ सकता हूँ, हिसाब किताब होता है, दूसरे काम होते हैं। अल्लाह के रसूल वो हैं कि कुरान की आयत है कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे बारे में ना हरीस हैं, यानी अल्लाह के रसूल मोमिनों के लिए हरीस हैं, वो चाहते हैं कि मोमिनों का किसी तरह से भला हो जाए। इतनी दुआ करने के बाद अगर हमारी दुआ कबूल ना हो तो इसका मतलब है कि हमारा रसूल, हमारे आइमा, हमारे हक में इससे अच्छी कोई चीज़ चाह रहे हैं कि जो हमें पता नहीं है। तो साथ की यह हालत है कि अल्लाह के रसूल को बड़ा तरस आया कि कहाँ यह अव्वल वक्त का नमाजी और कहाँ अब इसकी नमाज जमात की ख़त्म हो गई। और इतना भी अब वक्त इसके पास नहीं कि अल्लाह के रसूल दुकान पे जाके बैठे थे या अल्लाह के रसूल से बात कर सके, अपना काम किया जा रहा है अल्लाह के रसूल बैठे हुए। बड़ा गमजदा हुए अल्लाह के रसूल, देखा दोबारा जिब्रील आए, कहा है अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने कहा है साथ से वो दो दिरहम के जो आपने दिए थे वो वापिस ले लें। अब हुक्म परवरदिगार है, अल्लाह के रसूल गए और साथ से कहा है साथ वो जो दो दिरहम मैंने तुमको दिए थे वो वापिस कर दो। कहा अल्लाह के रसूल दो दिरहम की क्या बात कर रहे हैं, अब तो माशाल्लाह मेरी इतनी अच्छी हालत है 200 दिरहम देने को तैयार हूं। कहा नहीं, मुझे वही दो दिरहम दे दो जो मैंने तुमको दिए थे। साथ है दो दिरहम निकाल के दे दिए अल्लाह के रसूल को। जैसे ही दिरहम रसूल के हाथ में गया कारोबार बिल्कुल बरक्स हो गया। अब दो दिरहम की चीज लेके आ रहा, कोई एक दिरहम की लेने को तैयार नहीं है। और वही कारोबार के जो इतना ऊपर गया था, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ऐसा हुआ कि वही साथ दोबारा जो है चबूतरे पे आके बैठने लगे, दोबारा वही नमाज के पीछे आके बैठने लगे। तो जिब्रील ने आके बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल, जो खुदा नहीं दे रहा था वो इसलिए नहीं दे रहा था कि देखो अगर इसके पास दौलत नहीं थी दुनियावी तो क्या हुआ, ईमान तो था ना, तकवा तो था ना इसके पास। आपको बड़ा तरस आया, अल्लाह ने इसको दिया और अल्लाह ने आपको ये दिखा भी दे कि देखो इसको जो हम नहीं दे रहे ना, हम जालिम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एक को देते हैं एक से छीन लेते, नहीं, हम देते हैं लेकिन देते हैं देख के कि देखो अगर इसका ईमान सलामत है, इसका दीन सलामत है और दौलत से खराब नहीं होगा तो उसको दौलत भी देते हैं। और अल्लाह के रसूल बाद में दोबारा खुश हुए कि चलो दुनियावी माल तो चला गया लेकिन साथ का ईमान तो वापिस आ गया ना। तो क्या है कि हदीस का दूसरा जुमला क्या है कि वह तफीज इल्लाह, अपने कामों को अल्लाह के सिपुर्द कर दो। दुआ कर ली, सारे काम कर लिए, उसके बाद भी मसला मुश्किलात नहीं जा रही, इसका मतलब है कि खुदा इससे अच्छी कोई चीज हमको देने वाला है, अपने कामों को अल्लाह के सिपुर्द कर दो। ईमान की दूसरा सुतून ये है। एक रवायत का जुमला है कि अगर मोमिन को जब रोज कयामत अजर मिलेगा ना तो वो देखेगा कि जो दुआएं मेरी कबूल नहीं हुई थी उसका जो अजर है वो कहीं ज्यादा है। एक मरतबा वो हसरत करेगा, काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना होती, कि एक दुआ कबूल नहीं हुई तो अल्लाह ने उसका ये अजर दिया है। वो वहां पे हसरत करेगा, काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना होती, क्योंकि अल्लाह इतना अरहमर रहीमीन है कि अगर मोमिन दुआ करे और दुनिया में किसी वजह से उसकी दुआ कबूल ना हो तो आखिरत में उसको अजर देता है कि मेरे मोमिन ने मेरे सामने गिड़गिड़ा के दुआ मांगी थी कि परवरदिगार मसलन मुझे औलाद दे दे या मेरे माल में बरकत दे दे। तो अपने कामों को खुदा के हवाले कर दो, बाकी उसमें क्या करना है वो अल्लाह की जिम्मेदारी है। देखो खुदा कितनी बरकत देता है दुनिया और आखिरत दोनों में। तीसरा तो तुम क्या है कि वह तस्लीम उल अम्रिल्लाह, ये सबसे मुश्किल काम है कि अल्लाह पे तवक्कुल भी इंसान कर लेता है, अपने कामों को भी अल्लाह के हवाले कर लेता है, मजबूर है, क्या करे। अब अगर औलाद नहीं हो रही तो क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो ये तो मजबूर हो गया, अब तो अल्लाह के हवाले क्या कर सकते। लेकिन तीसरी चीज क्या है कि वह तस्लीम उल अम्रिल्लाह, कि जब तुमने अल्लाह पे तवक्कुल कर लिया, अपने कामों को अल्लाह के सिपुर्द कर दिया, अब जो अल्लाह की तरफ से फैसला आ रहा है उस पर तस्लीम हो जाओ, उस पर राजी हो जाओ और कभी शिकवा जबान पे नहीं आना चाहिए। कितनी ही नेमतें हमारी हमसे दूर होती हैं हमारी बेजा शिकवे की वजह से। मसलन परवरदिगार तूने उसको इतना दिया और मेरी हालत देख, परवरदिगार उसके देखो कितने बेटे, मेरा कोई बेटा नहीं। परवरदिगार उसके पास इतनी अच्छी गाड़ी, मेरे पास कुछ नहीं। जबकि उसके जहन में बात क्या आ रही थी, मैं इतना नमाजी इतना परहेजगार, अब वो कुछ भी नहीं करता, उसको सब कुछ मिल रहा है। यही तो ईमान का इम्तिहान होता है कि कभी खुदा दे के इम्तिहान लेता है, कभी ले के इम्तिहान लेता है। सूरह तौबा की आयत है कि तुम्हें ये कुफार की माल और दौलत और औलाद जो है ना वो परेशानी में ना डाल दे कि ये काफिर हैं, ये मुशरिक हैं, उसके बावजूद इनकी दौलत देखो, इनकी औलादे देखो। आयत का आखिरी वाला जुमला क्या है कि ये तुम्हें जाहिर में लग रहा है कि बड़े अच्छी हालत में, हमने इनको ज्यादा माल ज्यादा औलाद दे के ही इनको दुनिया में आजाद दे दी कि औलाद और माल के चक्कर में ही परेशान रहते हैं कि इस माल को कैसे बढ़ाया जाए, इस माल को कहाँ लगाया जाए, इस औलाद के लिए क्या किया जाए। तो कभी ये होता है कि इंसान को लेके खुदा इम्तिहान लेता है कि दिया था कोई चीज वापस ले ली, और कभी होता है दे के इम्तिहान लेता है, लो बहुत दौलत मांग रहे थे, बहुत नेमतें मांग रहे थे, लो अब तुम्हारे इम्तिहान है, बताओ कितने दिन पे बाकी हो। तो तीसरा सुतून क्या है کہ وہ تسلیم الامر اللہ کہ خدا جو ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے اس پہ انسان کو راضی ہو جانا چاہیے کہ یقیناً جب خدا میرے بارے میں یہ فیصلہ کر رہا ہے تو یقیناً اس میں میرے لیے کوئی فائدہ ہے, اور اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہماری نعمتوں کو ٹھکرا دے. کتنی ہی نعمتیں انسان کی اپنی زبان کی وجہ سے واپس پلٹ جاتی ہیں. ان شکرتم لازیدنکم, یہ تو ہمارا اور آپ کا بھی اخلاق ہے نا کہ اگر کسی کو کوئی چیز نہ دیں بار بار شکریہ ادا کرے کہ آپ کا بڑا شکریہ, بڑا کرم کرتے ہیں آپ. ایک مرتبہ انسان ضمیر شرمندہ ہوتا ہے نا کہ میں تو اسے کچھ بھی نہیں دیتا تو اس کے باوجود یہ شکریہ ادا کرتا ہے, انسان شرم میں دینے لگتا ہے کہ یار یہ دیکھو بغیر دیے ہوئے میرے یہ اتنا احسان مند ہے. تو یہ تو انسان ہے, اللہ تو اس سے زیادہ کہیں رحمان ہے کہ ان شکر تم لزیدنکم, اگر نعمت نہیں ملی اور زیادہ شاکر ہو جاؤ. اگر تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے تو نہ ہونے پہ شکر ادا کرو, پروردگار تو نے گاڑی نہیں دی یقیناً کوئی مصلحت ہوگی, پروردگار تو نے فلاں نعمت نہیں دی یقیناً اس میں کوئی میرے حق میں بہتری تھی کہ جس کا فائدہ مجھے نہیں پتا. جب انسان چار دفعہ شکر ادا کرتا ہے پانچویں مرتبہ اللہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو, ایک وہ ہے کہ جس کو سب کچھ ملا شکرانہ نہیں کر رہا ہے, یہ ہے کہ جس کو کچھ نہیں ملا شکر کر رہا ہے, خدا دینا شکر کر دیتا ہے. تو تیسری چیز کیا ہوگی؟ تسلیم اللہ. اور آخری چیز کیا ہے؟ کہ جو خدا مقدر کر دے اس پہ راضی ہو جائے, کہ اپنے عام طور پر یہ ہوتا ہے لوگ انسان اپنی قسمت کو کوسنے لگتے ہیں, ہم تو ہیں بس قسمت, یہ بھی صحیح چیز نہیں. کہ خدا کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا, ہمیشہ سب کو اچھا کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم یہ نہیں سمجھو کہ سارے عذاب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں, کتنے گناہ ایسے کہ جو انسان اپنے ہاتھوں کی وجہ سے اپنے اوپر لاتا ہے. دعا قبول نہیں ہو رہی, بڑی اچھی اچھی دعائیں پڑھ لی, سارا قرآن پڑھ کے دعا کی, دعا قبول نہیں ہوئی. کیوں دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ کے ظالم ہو گئے کیا؟ نہیں, ظالم تو نہیں. پھر دعا قبول کیوں نہیں؟ پتا چلا کہ دو سال سے اپنی ماں سے ملنے ہی نہیں گئے, بیچاری بوڑھی جو ہے بیٹے کو یاد کرتی, صلہ رحمی نہیں کی. اب صلہ رحمی نہیں کی, اب دعا قبول نہیں ہو رہی, اور بعد میں اعتراض کیا ہو رہا ہے کہ ہم سارے اعمال کرتے ہیں اس کے بعد دعا قبول نہیں ہو رہی. دیکھو تم نے ایک گناہ ایسا کیا کہ جو دعا کو قبول ہونے سے روکتا ہے. تو قضا پہ خدا کے راضی ہو جاؤ کہ جو تمہارا مقدر پروردگار عالم نے لکھ دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. یہ چار ستون کہ جس پہ ہمارا ایمان قائم ہے مولا کائنات فرما رہے ہیں. اس کے بعد ایک حدیث اگر میں شروع کروں تو اب ٹائم نہیں رہے گا, اس لیے اس کو چھوڑتے ہوئے انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی اور خدمت کا موقع ملا تو آپ کی خدمت کروں گا اس حدیث کے حوالے سے. کہ یہ مجالس, یہ محافل, یہ ہے ہی اسی لیے کہ دیکھو آؤ اپنے آپ کو چیک کرو, اپنے آپ کو دیکھو کہ واقعی تم اسی طرح سے ہو, یعنی ہم, میں تم کا لفظ غلط کہہ گیا, کہ آیا ہم اسی طرح ہی ہیں کہ جس طرح آئمہ چاہ رہے ہیں. اور حدیث کے لیے خالی یہ نہیں ہے کہ خالی انسان سنے اور نہیں, اس کو حفظ کرو. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من حفظ 40 حدیثا وعمل بها بعث اللہ فقیہا عالما یوم القیامہ, کہ جس نے ہماری امت میں سے 40 حدیثوں کو حفظ کیا خدا روز قیامت اس کو حفظ بھی کرے اور اس پہ عمل بھی کرے تو خدا روز قیامت اس کو فقی اور عالم میں شمار کرے گا. یعنی ایک فقی کا رتبہ اتنا آسان نہیں ہے, 50-50 سال 60-60 سال محنت کرتا ہے تب کہیں جا کے فقی بنتا ہے. اور حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں کہ 40 حدیث کو حفظ کرو اور اس پہ عمل کرو تمہیں خدا فقی کے برابر والے اسٹیٹس پہ لا کے کھڑا کر دے گا. تو پتہ یہ چلا کہ فقی میں اور اس میں کوئی ایک مناسبت ہے. وہ مناسبت کیا ہے؟ وہ مناسبت یہ کہ وہ بھی حدیث کو پڑھتا ہے تو اس پہ عمل کرتا ہے, اور تم بھی حفظ کر کے جب یاد کر کے اس پہ عمل کرتے ہو تو گویا تم اور وہ عمل میں ایک ہی طرح ہو.